At Giant Eagle, you may have spotted the Stacker. With uncanny MyPerks ability, she stacks up the perks to choose either dollars off or up to 20% off her entire grocery bill. The Stacker, stacking up huge savings with MyPerks. Find your MyPerksonality and transform your shopping into free gas and groceries. Full details at GiantEagle.com/MyPerks. Perks cannot be earned or redeemed on select items. Restrictions apply.
Hey there, you're listening to The Quint.
पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले सियासी घमासान शुरू हो चुका है। ममता बनाम केंद्र सरकार की लड़ाई तो काफी पहले से ही चल रही थी, लेकिन अब चुनाव नजदीक हैं तो जोर आजमाइश भी तेज हो चुकी है। 2021 में होने वाले बंगाल चुनाव कई मायनों में खास हैं, क्योंकि बीजेपी बिहार चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद अब पश्चिम बंगाल में अपना झंडा गाड़ना चाहती है। अमित शाह पिछले कई महीनों से इसका रोडमैप तैयार कर रहे हैं, जिसके बाद से ही बंगाल की सत्ता पर काबिज टीएमसी को सत्ता गंवाने का डर सताने लगा है। इसके अलावा लेफ्ट कांग्रेस बीजेपी और टीएमसी के आपसी टक्कर से फायदा उठाने की फिराक में। बीजेपी और टीएमसी आमने सामने हैं तो चुनाव में ध्रुवीकरण होना तय माना जा रहा है। ऊपर से AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने भी इशारा किया है कि वो बंगाल चुनाव पूरे उत्साह के साथ लड़ेंगे। क्विंट हिंदी पर आप सुन रहे हैं बिग स्टोरी हिंदी। मैं हूं आपका होस्ट वैभव पलनीटकर। तो राजनीतिक दलों ने बंगाल चुनाव को लेकर कमर कस ली है और कहा जा रहा है कि राजनीतिक रूप से आने वाला साल 2021 बंगाल का साल होगा। आज के पॉडकास्ट में हम आपको बंगाल की राजनीति की ABCD बताएंगे, विधानसभा की मौजूदा स्थिति को समझाएंगे और हाल में हुए अपडेट से भी रूबरू कराएंगे। इसके अलावा गठबंधन को लेकर लगाए जा रहे कयासों पर भी होगी बात। पॉडकास्ट में हम बात करेंगे क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन से। इसके अलावा हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के क्विंट के रिपोर्टर देबायन दत्ता से। तो लौटते हैं आज के पॉडकास्ट पर। सबसे पहले आपको मौजूदा विधानसभा का हाल बता देते हैं। बंगाल विधानसभा में 294 सीटें हैं, इसमें से अभी सत्ताधारी पार्टी टीएमसी की 219 सीटें हैं। वहीं बीजेपी ने पिछले विधानसभा चुनाव में सिर्फ 16 सीटें ही जीती थी, कांग्रेस ने 23 और CPM ने 19 सीटें जीती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाले नतीजे आए थे। राज्य की 42 लोकसभा सीटों पर ममता बनर्जी ने सिर्फ 22 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि इसके पहले 2014 में टीएमसी ने 34 सीट जीती थी। 2014 के चुनाव में सिर्फ 2 सीटें जीतने वाली बीजेपी ने 18 सीटें जीती और इन नतीजों से टीएमसी की चूलें हिल गईं। अब टीएमसी को भी अंदाजा हो गया है कि उनकी बंगाल में सबसे बड़ी विरोधी बीजेपी ही है। अब आपको एक ताजा अपडेट देते हैं। टीएमसी के नाराज नेता और पूर्व मंत्री सुवेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की सदस्यता और टीएमसी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। पश्चिम बंगाल की सिंचाई और परिवहन मंत्री रहे सुवेंदु अधिकारी ने नवंबर में ममता बनर्जी की कैबिनेट से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। अब खबर यह है कि आने वाले हफ्ते में गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे के दौरान सुवेंदु अधिकारी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। बीजेपी उपाध्यक्ष और पहले सुवेंदु के सहयोगी रह चुके मुकुल रॉय ने इस्तीफे के बाद कहा है कि उन्होंने अधिकारी को कहा था कि टीएमसी छोड़ देंगे तो वे ज्यादा खुश रहेंगे। अब बात करते हैं क्विंट के पश्चिम बंगाल के रिपोर्टर देबायन दत्ता से। देबायन, आप समझाइए कि सुवेंदु अधिकारी के टीएमसी छोड़ने से क्या नए समीकरण खड़े होंगे और जो उनका होल्ड वाला इलाका है उस पर क्या असर देखने को मिल सकता है?
सुवेंदु अधिकारी का छोड़ने का जो न्यूज है वो थोड़ा शॉक वेव्स गया है, लाइक शॉक वेव्स गया है आसपास, स्पेशली उसके जो बैस्टियन है, हाँ, वहाँ पे उसके जो लॉयलिस्ट्स है वो लोग थोड़े, मतलब गुस्सा तो है टीएमसी से कि हमारे लीडर को इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसकी वजह से हमारे लीडर जा रहे हैं तो हम भी उनके साथ जा रहे हैं। एंड पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो बोल रहे हैं कि सुवेंदु अधिकारी, बिकॉज उनका इतना होल्ड है उस एरिया में एंड उनका क्योंकि हिस्ट्री भी है, हाँ, तो वो उनके साथ अपने साथ एटलीस्ट 25 से 30 सीट लेके जा सकते हैं टीएमसी से बीजेपी। और अगर ये हो गया तो बीजेपी के पास बहुत बड़ा चांस है टू क्रॉस द मैजिक नंबर और क्रॉस द हाफ वे मार्क एंड गेट अ मेजॉरिटी। मेजॉरिटी लाने के लिए उनके पास काफ़ी सॉलिड चांसेस है। तो ये है ज़मीनी हालत, बट बाकी उसके हिसाब से कैंपेनिंग वैम्पेनिंग का है, कैंपेनिंग चल रहा है बट पूरा फोर्स लेके नहीं चल रहा है, कैंपेनिंग चल रहा है हाँ, छोटा मोटा जगह पे कैंपेनिंग हो रहा है, जैसे अमित शाह आ रहे हैं 18-19 तारीख को, हाँ फिर पीएम मोदी आइदर आ सकते हैं या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से विश्वभारती यूनिवर्सिटी का सेलिब्रेशंस पे पार्ट ले सकते हैं। हाँ, फुल फ्लेजेड कैंपेनिंग अभी तक पूरी तरह स्टार्ट नहीं हुआ है।
आपको याद होगा पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर अचानक हमला हो गया था, ईंट पत्थर तक चल गए थे। इस घटना को लेकर अब भी केंद्र और ममता सरकार में तकरार तेज हो रही है। केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल के उन 3 आईपीएस अधिकारियों का तबादला कर दिया है जो नड्डा की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार थे। इन सभी को डेप्यूटेशन पर दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने एक बार फिर इसका विरोध किया है। ममता ने कहा है कि केंद्र सरकार अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। साफ है बीजेपी बंगाल चुनाव को लेकर बहुत एग्रेसिव दिख रही है। लगातार केंद्रीय मंत्रियों के दौरे वहां हो रहे हैं, टीएमसी के कई दिग्गज नेता टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब बात करते हैं क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन से और उनसे समझते हैं कि टीएमसी की स्थिति चुनाव के पहली कैसी है। जब खबरें आ रही हैं कि कई सारे दिग्गज नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, टीएमसी बंगाल के चुनाव में कहां खड़ी नजर आ रही है?
क्या आने वाले दिनों में तृणमूल कांग्रेस से भाजपा की तरफ जाने वाले नेताओं की जो कतार लगी हुई है उसमें कोई कमी नहीं आने वाली है। नेता भी जाएंगे तृणमूल से भाजपा में और पार्टी कार्यकर्ता भी जाएंगे, लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या इनके जाने से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की व्यक्तिगत लोकप्रियता में कोई कमी आ रही है या नहीं आ रही है। चूँकि तृणमूल कांग्रेस लेफ्ट की तरह नहीं है, ये एक पर्सनैलिटी कल्ट वाली पार्टी है। कई जो नेता हैं उनकी लोकप्रियता सीधे सीधे ममता बनर्जी की लोकप्रियता से जुड़ी हुई है। तो जिस तरह लेफ्ट की बुरी हालत हो गई थी 2011 के चुनाव आने से पहले ही, वैसे तृणमूल कांग्रेस का हाल नहीं है, क्योंकि ममता बनर्जी की पर्सनल लोकप्रियता में कोई बहुत ज़्यादा कमी नहीं आई है। जो ममता बनर्जी के सलाहकार हैं प्रशांत किशोर, वो भी एक पर्सनैलिटी ब्रांड को आगे बढ़ाने वाले शख्स हैं, तो जाहिर है उनको भी ये सिचुएशन पसंद है कि एक ही शख्स इस पार्टी का ब्रांड है और उसी ब्रांड को मैं आगे बढ़ाऊं। तो जब तक उस ब्रांड पर असर नहीं पड़ रहा है तब तक जो जिस कदर भाजपा नुकसान करना चाहते हैं तृणमूल कांग्रेस का, उस कदर नुकसान नहीं होगा। नुकसान ज़रूर हो रहा है जो नेता जा रहे हैं उनसे, लेकिन वही जो मैं फिर से कहूँगा, जो लेफ्ट फ्रंट की हालत थी 2011 के चुनाव के पहले, अभी तृणमूल कांग्रेस की उतनी बुरी हालत नहीं हुई है।
सीपीआईएमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने सुझाव दिया था कि बंगाल में बीजेपी के अलावा जितनी भी दूसरी पार्टियां हैं उनको साथ आकर बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहिए। आपको क्या लगता है कि बंगाल में क्या टीएमसी और लेफ्ट पार्टियां साथ आ सकती हैं?
दीपांकर भट्टाचार्य सीपीआईएमएल के नेता हैं। सीपीआईएमएल का अभी जाहिर है बिहार के रिजल्ट के बाद, चूंकि वहां पर उनका अच्छा प्रदर्शन रहा है, उन्हें लगता है वो बंगाल में भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं। लेकिन देखने वाली बात यह कि सीपीआईएमएल यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्टी नहीं है, तो एमएल अपने तरफ से ज़रूर कह सकती है कि तृणमूल कांग्रेस, लेफ्ट कांग्रेस और एमएल खुद सारे हाथ मिला लें, लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि लेफ्ट और कांग्रेस कभी भी इस चीज़ को लेकर राज़ी नहीं होंगे। कम से कम लेफ्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगा। लेफ्ट का फ़िलहाल मानना ये है कि उनका नंबर वन दुश्मन जो है वो ममता बनर्जी है, और वो चाहते हैं कि तृणमूल कांग्रेस को इस बार हराया जाए ताकि अगली बार वो खुद डायरेक्ट बीजेपी से लड़ पाएँ। तो लेफ्ट का तृणमूल के साथ कोई भी गठबंधन करना ये नामुमकिन के बराबर है।
आदित्य जी, बिहार में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर चुकी एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी इशारा किया है कि वो भी इस बंगाल के चुनाव में दमखम के साथ लड़ेंगे। क्या उनके चुनाव लड़ने से बीजेपी को फायदा होगा या फिर टीएमसी को नुकसान होगा, क्या हो सकता है?
AIMIM मुसलमानों के हकूक की बात करती है, उनके रिप्रेजेंटेशन की बात करती है, तो जाहिर सी बात है उनके आने से उन्हीं पार्टियों को नुकसान पहुंचेगा जो मुस्लिम वोटों पर डिपेंडेंट हैं। अब भाजपा को मुस्लिम वोट मिलते नहीं हैं ज़्यादा, तो जाहिर सी बात है अगर पश्चिम बंगाल में AIM आती है तो ज़्यादा नुकसान तृणमूल कांग्रेस को ही पहुँच सकता है। अगर लोकसभा का चुनाव हम देखें तो तकरीबन कहा जाता है 70% मुसलमानों ने तृणमूल कांग्रेस को वोट किया था। लेकिन जिन इलाकों में AIMIM अभी आने की कोशिश कर रही है वो वैसे इलाके हैं जो उन सीमांचल बिहार के सीमांचल इलाके से सटे हुए हैं, यानी उत्तर दिनाजपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, ये वाले जो ज़िले हैं उत्तरी बंगाल के, तो ये ज़िले ऐसे हैं जहाँ कांग्रेस के गढ़ माने जाते थे ये ज़िले, और कांग्रेस वहाँ धीरे धीरे कमज़ोर होती गई है और कांग्रेस की जगह पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ हद तक तृणमूल कांग्रेस ने ली थी। लेकिन ये भी हो सकता है कि जो AIMIM आए वो तृणमूल के साथ साथ कांग्रेस का भी वोट ले लें, जैसे हमने सीमांचल में देखा था AIMIM के आने से कांग्रेस का तो नुकसान हुआ लेकिन जदयू का भी नुकसान हुआ क्योंकि उस इलाके में जदयू ज़्यादा मजबूत थी। तो ये कहना कि सिर्फ तृणमूल को नुकसान होगा ये शायद पूरी तरह से एक्यूरेट ना हो। क्या बीजेपी को फ़ायदा होगा? जाहिर है जब मुस्लिम वोट बढ़ता है तो बीजेपी को फ़ायदा होता है, इसमें कोई कोई शक की बात नहीं है। लेकिन एक तरह से तृणमूल कांग्रेस के लिए ये एक मौका भी है, क्योंकि अब तक भाजपा के कार्यकर्ता और लीडर हमेशा तृणमूल कांग्रेस पर ये इल्ज़ाम लगाते आए हैं कि भाई तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है, मुस्लिम अपीजमेंट करती है। लेकिन जब एक हकीकत में जो मुस्लिम पार्टी है AIMIM की तरह वो जब सामने आ जाती है तो फिर भाजपा के लिए ये प्रोपोगंडा करना कि तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम पार्टी है वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि AIMIM के सामने जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस मुस्लिम पार्टी कतई नजर नहीं आएगी, जो कि वो है भी नहीं।
आदित्य सर से एक आखिरी सवाल, बीजेपी आगे आने वाले वक्त में यानी चुनाव से ठीक पहले किस रणनीति पर काम कर सकती है?
क्योंकि बीजेपी के लिए एक चीज़ जो बहुत काम कर रही है पश्चिम बंगाल में वो ये है कि तृणमूल कांग्रेस के ग्राउंड लेवल के नेताओं के ख़िलाफ़ और ग्राउंड लेवल काडर के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा लोगों में नाराज़गी है। लोगों को ये लगता है कि करप्शन फैला है और लोगों को लगता है कि गुंडागर्दी फैली है इनकी वजह से। तो भाजपा जाहिर सी बात है जो लोकल एंटी इनकम्बेंसी है उस पर पूरी तरह से कैपिटलाइज करने की कोशिश करेगी। दूसरी बात जो ये है कि तृणमूल कांग्रेस पर ये भाजपा कहती आई है कि ये मुस्लिम अपीजमेंट करती है, तो जाहिर सी बात है भाजपा एक हिंदुत्व कार्ड बंगाल में खेलेगी, तो ये दूसरा एक फैक्टर है। तीसरा फैक्टर है कि वो प्रधानमंत्री मोदी की के पर्सनालिटी के अराउंड अपना पूरा कैंपेन चलाएंगे, क्योंकि उनके पास ममता बनर्जी को टक्कर देने वाला बंगाल का नेता तो कोई नहीं है, तो ये इस पूरे इलेक्शन को ममता बनाम मोदी करके चलाएंगे ना, और ममता को मौका नहीं देंगे कि वो ममता बनर्जी बनाम क्वेश्चन मार्क या ममता बनर्जी बनाम दिलीप घोष या बाबुल सुप्रियो या किसी भी बीजेपी नेता का नाम आप वहाँ डाल लें। तृणमूल कोशिश करेगी कि इलेक्शन उस टर्म्स पे लड़ा जाए, बीजेपी कोशिश करेगी कि ममता बनाम मोदी के नाम पर ये इलेक्शन पूरा लड़ा जाए। तो हिंदुत्व फैक्टर, मोदी फैक्टर और एंटी इनकम्बेंसी, लोकल एंटी इनकम्बेंसी, इन तीन फैक्टर्स पर बीजेपी पूरी तरह से अपना कैंपेन चलाएगी। लेकिन एक उसमें हमें एक कैवियट ऐड करना चाहिए, वो ये है कि एक तरफ तो बीजेपी लोकल एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा उठाना चाहेगी, पर दूसरी तरफ तृणमूल के वही काडर जो लोकल लेवल पर जिनके खिलाफ नाराज़गी है या लीडर जिनके खिलाफ नाराज़गी है उन्हीं को शामिल कर रही है भाजपा, तो ये कैसे बैलेंस करती है बीजेपी वो देखना होगा।
तो आपने क्विंट के पॉलिटिकल एडिटर आदित्य मेनन से तफसील से समझा कि बंगाल चुनाव के राजनीतिक समीकरण कैसे बन रहे हैं। अब अमित शाह एक बार फिर बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं, कुल मिलाकर बंगाल में काफी कुछ एक्शन में रहने वाला है, इसलिए बंगाल से जुड़े सारे अपडेट्स के लिए क्विंट को फॉलो करें। सारे बड़े अपडेट्स, खास आर्टिकल और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इस पॉडकास्ट के एडिटर हैं संतोष कुमार और इसे प्रोड्यूस किया है आपके होस्ट वैभव पलनीटकर और कनिष्क दांगी ने। अगर आपको द बिग स्टोरी सुनना पसंद है तो क्विंट हिंदी की वेबसाइट पर जाइए, लॉग ऑन कीजिए और हमारे पॉडकास्ट सेक्शन का मजा लीजिए।